हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रिया सिंह है और आज हम डिस्कस करेंगे आपकी किताब सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है भारत का संविधान। और लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे अपने संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के अंदर आते हैं। और हम बात कर रहे थे सरकारी पदों पर नियुक्ति के बारे में। इसका मतलब ये हुआ कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, यानी जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अपॉइंटमेंट्स होती हैं, उन सभी अपॉइंटमेंट्स में सभी सिटीजन्स को बिल्कुल इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, या फिर आप किस जाति के, किस लिंग के हैं ये। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन जरूर रह जाता है, वो ये कि जो कंपटीशन है उसको बिल्कुल फेयर करने के लिए हमारी सरकार ने या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसमें एक एक्सेप्शन दिया है, वो ये कि जो पिछड़ा वर्ग है हमारी समाज का, यानी वो लोग जो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, जिनको हम इंग्लिश में शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स मांगते हैं, वो लोग एक्सेप्शन में आते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली देखा जाए तो उनको वो सारी फैसिलिटीज नहीं मिली जो कि सामान्य वर्ग के लोगों, यानी जनरल कैटेगरी के लोगों को मिली हैं। इसीलिए कंपटीशन को फेयर बनाने के लिए हमारी सरकार ने ऐसे लोगों को थोड़ा कंसेशन प्रोवाइड किया है, और उन कैटेगरीज में विमेंस भी आती हैं, क्योंकि पहले विमेंस के पास भी इतने राइट्स नहीं थे कि उनको फ्रीडम मिल सके एजुकेशन की या फिर और भी कई सारी चीज़ों की। और इन्हीं सारे बैकवर्ड रिचुअल्स की वजह से, बैकवर्ड ट्रेडिशंस की वजह से कुछ ऐसे लोग हैं, एक ऐसा तबका है सोसाइटी का जिसको हम सेक्शन कहते हैं, कि वो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, और इसीलिए उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कंसेशन दिया जाता है गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स में। इसके अलावा समानता के अधिकार में ही, यानी जो राइट ऑफ इक्वालिटी है, इसके ही अंडर अनटचेबिलिटी का भी नियम कानून है। इसका मतलब ये कि जो कोई भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेगा उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपकी जो भी टाइटल्स हैं इसका भी दी एंड कर दिया जाएगा। और वो इसलिए बच्चों, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स का राज था हमारी कंट्री पर, तो वो हमारे देश के कुछ इंटेलेक्चुअल्स को एक टाइटल दिया करते थे, जैसे सर की उपाधि जिसको हम कहते हैं सर का टाइटल, या नाइटहुड जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, महात्मा गांधी को मिला था। हाँ, ये बात अलग है कि इन लोगों ने किसी रीजन के चलते अपने टाइटल्स को रिटर्न कर दिया। इनके अलावा जो देसी रियासतें होती हैं, उन देसी रियासतों में राजा, महाराजा इत्यादि जैसे टाइटल्स का यूज होता था पहले, और उससे पता चलता था कि कोई इंसान जिसके नाम के आगे ये सारे टाइटल्स लगे हों, वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलता है, उसकी एक अलग पर्सनालिटी है। और इस चीज को खत्म करने के लिए, क्योंकि वो जो इमेज बन जाती है इससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, और इसीलिए इस चीज को खत्म करने के लिए सरकार ने आर्टिकल 18 के अंदर ऐसा एक रूल बनाया कि आप कोई भी टाइटल यूज नहीं कर सकते, एक्सेप्ट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। इसीलिए आर्टिकल 18 में भी एक्सेप्शन ये दिया गया कि अगर आप में कोई स्ट्रेंथ या फिर कोई टैलेंट है जिसके बेसिस पर आपको परमवीर चक्र, महावीर चक्र या भारत रत्न और पद्म सम्मान जैसे टाइटल्स मिलते हैं, तो आप इनका इस्तेमाल अपने नाम के आगे नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये सम्मान और इसके साथ साथ कुछ नगद उपहार जरूर मिलेंगे। और इसको हम सम्मान मानते हैं, रिस्पेक्ट मानते हैं, ना कि आपको ये एक लीनियज तौर पर मिला है, बल्कि ये आपको आपके टैलेंट के लिए मिला है। और इन्हीं सारे प्रोसेस के थ्रू हमारी सोसाइटी में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इक्वालिटी लाने की कोशिश की, साथ ही साथ सोशल इक्वालिटी को एस्टेब्लिश करने पर भी बहुत जोर दिया। और इसी के साथ हमारा डिस्कशन जो है समानता के अधिकारों पर खत्म होता है। तो अभी हमने देखा आर्टिकल 14-18, और अब हम आगे बढ़ेंगे आर्टिकल 19-22 देखेंगे। तो बच्चों, आप फटाफट से पेज नंबर 89 टर्न अप करिए, और 89 पर सेकेंड पॉइंट में लिखा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19-22, जिसके अंतर्गत लिखा है समानता के अधिकार के बाद संविधान स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, जिससे कि नागरिक अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास कर सके, देश के सभी नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति करने की शांतिपूर्ण व बिना शस्त्रों के सम्मेलन करने की, किसी तरह का संगठन बनाने की, भारत में कहीं पर भी घूमने फिरने की और निवास करने की, तथा कोई भी पेशा, नौकरी, व्यवसाय आदि आजीविका की स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन इन सारी स्वतंत्रताओं पर युक्तियुक्त अथवा उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। भाषण की स्वतंत्रता का अर्थ किसी का अपमान करना, न्यायालय की अवमानना करना या सदाचार व नैतिकता का उल्लंघन करना नहीं है। व्यक्ति समाज के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए उसको इसी सीमा तक स्वतंत्रता है कि दूसरों लोगों की स्वतंत्रता में किसी तरह की बाधा नहीं पहुंचे। संविधान यह अधिकार भी प्रदान करता है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने ऐसा कार्य करते समय किसी प्रचलित विधि का अतिक्रमण नहीं किया हो। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता। इसी तरह किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य भी नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 21 में है, जो प्राण और देहिक स्वतंत्रता अर्थात जीवन का अधिकार प्रदान करता है, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या देहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 क में जीवन के अधिकार में शिक्षा के अधिकार को शामिल करते हुए कहा गया कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इसके अतिरिक्त यह भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि किसी व्यक्ति को कैद किया गया है तो उसे शीघ्र ही गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराना होगा। उसे अपनी इच्छा से किसी वकील की सहायता लेने से भी नहीं रोका जा सकता। पुलिस का कर्तव्य है कि वह बंदी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर ही न्यायालय में प्रस्तुत करे। इसका मतलब ये कि सरकार ने, संविधान ने, संविधान बनाने वालों ने समानता के अधिकार के बाद हम आम नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि बिना स्वतंत्रता के समानता का होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, और इसलिए ताकि जो आम जनता है, कॉमन पीपल है, वो अपनी पर्सनालिटी का बढ़िया से डेवलपमेंट कर सके। और इसीलिए देश के सभी नागरिकों को, सभी सिटीजन्स को अपने थॉट्स को प्रेजेंट करने का और उसके बाद पीसफुली स्ट्राइक करने का, पीसफुली प्रोटेस्ट करने का, इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, अपने इंडिया में कहीं पर भी ट्रैवल करने का, घूमने का, फिरने का, प्लस कहीं पर भी निवास करने का यानी कि रहने का, कोई भी धर्म, कोई भी जाति अपनाने का, कोई भी नौकरी यानी किसी भी जॉब में इंडल्ज होने का, इन सब चीज की फ्रीडम दी है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप स्त्री हैं तो आप ये नौकरी ना करके केवल आप ये नौकरी कर सकती हैं। यहाँ पर भी एक्सेप्शंस ऐसा है कि आपकी फिजिकल एबिलिटी को देख करके आज भी कई ऐसी नौकरियां होती हैं सरकार के डिपार्टमेंट में जहां पर विमेंस को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, लेकिन वो भी बिल्कुल रेशनल तरीके से और बहुत जस्टिफिएबल रीजंस के बाद ऐसा डिसाइड हुआ कि हाँ, विमेंस हर जगह पार्टिसिपेट कर सकती हैं, हर जगह जॉब कर सकती हैं, अपने आप को हर जगह रिप्रेजेंट कर सकती हैं। लेकिन आज भी हमारे देश में जैसे सैनिक बल है, तो सैनिक बल में जो सिपाहियों की पोस्ट होती है वहाँ पर विमेंस की अपॉइंटमेंट नहीं होती है। और शायद वो इस वजह से क्योंकि नेचुरली जो विमेंस होती हैं, फीमेल की बॉडी होती है, वो मेल की बॉडी से थोड़ी वीक मानी जाती है, और इसीलिए मेन की बॉडी में ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, तो वो सिपाही के पोस्ट पर, यानी कि नीचे के पोस्ट पर जितने भी ऑफिसर्स होते हैं फोर्सेस के, वहां पर अपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन जो विमेन्स होती हैं वो केवल ऑफिसर्स रैंक पर ही अपॉइंट होती हैं, क्योंकि ऑफिसर्स के रैंक पर आपको फिजिकल एक्टिविटीज कंपैरेटिवली कम करनी होती हैं और मेंटल एक्टिविटीज ज्यादा करनी होती हैं। इसके साथ साथ हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला है 19 आर्टिकल के अंदर। इसका मतलब कि आर्टिकल 19 के अंदर आपको अपने विचारों को प्रकट करने के, उनकी युक्तियुक्त करने के सारे अधिकार हैं। आपसे कोई नहीं कह सकता कि तुम ये मत बोलो वो मत बोलो। हाँ, अगर आप किसी के अपमान कर रहे हैं, न्यायालय का उल्लंघन कर रहे हैं, या फिर गलत तरीके से किसी चीज को थोप रहे हैं, तो वो आपके अभियुक्ति के अंडर नहीं आता, क्योंकि वो किसी और को नुकसान पहुंचा रहा है। और जो इंसान है उसकी जितनी भी फ्रीडम्स हैं वो उसकी खुशी के लिए बने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी फ्रीडम बिल्कुल अनलिमिटेड है, इन्फिनिटी तक है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर किसी चीज़ पे लिमिटेशन नहीं होती है तो वो चीज़ बहुत हार्मफुल हो जाती है, उसके पास पावर्स हो जाते हैं ज़्यादा, जिसका वो गलत यूज़ करती है। और इसीलिए इन सभी बातों को ध्यान में रख करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे पावर्स पर, हमारे फ्रीडम्स पर एक लिमिटेशन रखा है, ताकि हम अपनी जिंदगी सुकून से, पीसफुली, विद हार्मनी जी सकें, विदाउट अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ अदर्स। यानी कि हम किसी और की जिंदगी में कोई बाधा ना पहुंचाएं, इसलिए लिमिटेशंस बहुत जरूरी हैं। और इसके साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी राइट दिया गया है कि किसी भी इंसान को तब तक आप क्रिमिनल नहीं बोल सकते हैं जब तक कि कोर्ट उसको गिल्टी ना पाए, यानी कि उसका जो क्राइम है जब तक वो प्रूफ नहीं हो जाता तब तक वो अपराधी नहीं कहलाएगा। इसके अलावा जो अपराधी होते हैं उनको एक और ये छूट मिली है कि एक अपराधी को एक ही सज़ा मिल सकती है, यानी कि एक अपराध के लिए आप उसको दोबारा से दंडित नहीं कर सकते। इसके अलावा आप किसी भी इंसान को ये फोर्स नहीं कह सकते कि आप अपने अगेंस्ट स्टेटमेंट दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें मूवीज में ऐसा देखने को मिलता है कि पुलिस जबरदस्ती किसी को पीट करके उसका स्टेटमेंट लेती है, तो ऐसी सिचुएशन में वो इंसान घबरा जाता है और उसको चोट से बचना होता है, तकलीफ से बचना होता है, इसीलिए वो अपने अगेंस्ट स्टेटमेंट दे देता है। लेकिन ये लीगल तरीके से बिल्कुल गलत है। इसका मतलब कि आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वो अपने ही अगेंस्ट स्टेटमेंट दे। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट राइट जो है वो है आर्टिकल 21। इसके अंडर हर एक इंसान को राइट टू लिव, राइट टू एंजॉय योर लाइफ, अच्छे से जिंदगी जीने का फ्रीडम है। इसका मतलब ये कि वो किसी प्रेशर के अंडर या फिर किसी गुलामी के अंदर अपनी जिंदगी ना बिताए। इसलिए आर्टिकल 21 में बताया गया है कि किसी को भी एक अच्छी शांतिपूर्ण जिंदगी जीने का अधिकार है। और इसी के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2002 में एक अमेंडमेंट हुआ, यानी संशोधन हुआ, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 86 कहते हैं, जो कि 2002 में हुआ। और इसके अंदर एक एजुकेशन को भी जीवन का अधिकार माना गया, यानी राइट टू लाइफ के अंडर 21 आर्टिकल के अंडर सब क्लॉज ए के अंडर एजुकेशन को कंपल्सरी कर दिया गया। और इसको कंपल्सरी करने के लिए हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने 6 ईयर्स से लेकर के 14 ईयर्स तक के चिल्ड्रन को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के प्रॉमिस की है, यानी कि उसको उसके एजुकेशन से कोई भी नहीं रोक सकता। इसके बाद जो बच्चे काम करते हैं उनके काम पर भी रोक लगाई गई है कि वो किसी भी खतरनाक जगह या फिर कोई भी हजार्डियस प्लेस पर काम नहीं कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त यह भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि किसी व्यक्ति को कैद किया गया है, यानी अगर कोई व्यक्ति पुलिस के अंडर है तो ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस इंसान को 24 आवर्स के अंदर जुडिशरी में प्रेजेंट करे, जुडिशरी के सामने लेकर के जाए और उसको उसके सारे लीगल राइट्स प्रोवाइड करे। और इसके साथ साथ उसको अपना पर्सनल लॉयर चूज करने का भी राइट दिया गया है। तो ये सभी हमने राइट्स देखे फ्रीडम के अंदर, यानी आर्टिकल 19 से 22 के अंदर के जितने भी अधिकार हैं हमने उन सभी को डिस्कस कर लिया। और अभी हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे और भी अपने मौलिक अधिकारों को। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो लिखा है पेज नंबर 89 पर, पॉइंट नंबर 3, जिसके अंदर लिखा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अंडर ब्रैकेट अनुच्छेद 23-24। इसके अंदर लिखा है कोई व्यक्ति राज्य अथवा किन्हीं दूसरे व्यक्तियों के शोषण का शिकार नहीं हो, इसलिए संविधान शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। इसके अनुसार मानव के दुर्व्यवहार, बेगार प्रथा और जबरन श्रम पर रोक लगाई गई है। 14 वर्ष से कम आयु के लड़के लड़कियों को किसी कारखाने, खान या अन्य खतरनाक कार्यों में लगाने पर रोक लगाकर बाल श्रम का अंत कर दिया गया है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, जो समानता का अधिकार मिला है सोसाइटी में, वो सब बिल्कुल खोखले होंगे अगर हमारा शोषण होता रहा। और शोषण करने के कई सारे तरीके होते हैं, तो इन्हीं सारे शोषण के तरीकों से बचने के लिए सरकार ने या संविधान विधाताओं ने एक कानून बनाया कि ये हमारा फंडामेंटल राइट होगा, जिसको हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कहेंगे। यानी कि हर वो व्यक्ति जो कि हमारा शोषण कर रहा होगा वो एक मुजरिम कहलाएगा आर्टिकल 23 और 24 के अंडर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सरकार भी चाहे कि वो किसी का एक्सप्लॉयटेशन करे तो वो ऐसा नहीं कर सकती। इसका मतलब ये कि चाहे आप कितने भी पावरफुल हो, चाहे राज्य ही क्यों ना हो या फिर राज्य में समाज के ऊंचे तबके का ही कोई व्यक्ति क्यों ना हो, और वो चाहे कि वो किसी को जबरदस्ती गुलाम बना करके काम करवा ले या फिर किसी का कोई चीज ऐसे ही ले ले बिना कोई मुआवजा दिए हुए, तो ये एक गैर कानूनी काम होगा जिसको हम शोषण के अंडर काउंट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सरकार भी आपकी प्रॉपर्टी पर कुछ लेना चाहती है या फिर आपसे कोई फायदा लेना चाहती है, तो वो ये नहीं कहेगी कि तुम समाज कल्याण में अपनी प्रॉपर्टी दान दे दो, क्योंकि सरकार को भी आपकी प्रॉपर्टी को लेने के एक्सचेंज में कुछ न कुछ मुआवजा जरूर देना पड़ेगा। और इन्हीं सारे अधिकारों को हम अनुच्छेद 23 और 24 में समझ सकते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग ह्यूमंस के साथ जो भी स्लेवरी की प्रोसेस थी, यानी कि जबरदस्ती जिसको हम श्रम कहते हैं, बेगार प्रथा थी, दुर्व्यवहार हुआ करता था, यानी पहले के जमाने की अगर आप मूवीज देखेंगे तो उन मूवीज में आपको देखने को मिलेगा कि जो ठेकेदार होता था वो अपने यहाँ पर औरतों को कम पैसों में काम करवाता था, उसके साथ साथ वो औरतों पर अत्याचार भी करता था। लेकिन उस समय ऐसा कोई कानून नहीं था कि जो शोषण उस औरत का हो रहा है या अन्य किसी वर्ग का हो रहा है तो वो कहीं भी कंप्लेन लिखवा सके। और इन्हीं सारी चीजों को देख करके हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको कानून बनाया कि कोई भी किसी से फ्री में काम नहीं करवाएगा, या कंपेयर अगर किया जाए तो कोई किसी को कम पैसे नहीं देगा अगर वो बराबर का काम कर रहा हो तो। कोई भी किसी से बॉन्ड नहीं साइन करा सकता जिससे कि वो एक जनरेशन के बाद उसकी अगली जनरेशन भी उस इंसान के घर में काम करे। अक्सर आपने भी कुछ ऐसी मूवीज देखी ही होंगी जहां पर बेटा अपने बाप का कर्ज चुकाने के लिए किसी सेठ के यहाँ पर काम कर रहा होता है और वो दिन रात काम करता है, लेकिन फिर भी वो कर्ज नहीं चुका पाता और फिर वो एक्स्ट्रा मनी से उसके ऊपर कर्ज जो है वो लद जाता है, जिससे कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी उसी सेठ के यहाँ पर काम करते करते थक जाती है। और इसको हम कहते हैं बेगार प्रथा, जबरन श्रम। और इन्हीं सारे ट्रेडिशंस पर, रिचुअल्स पर, ये जो एक्सप्लॉयटेटिव ट्रेडिशंस थे, इन सब पर रोक लगाने के लिए आर्टिकल 23 और 24 आया था। इसके साथ साथ 14 वर्ष से कम के जो बच्चे बच्चियां होते हैं, यानी जो अभी अडल्ट नहीं हुए होते हैं या 14 ईयर्स से कम के बच्चे होते हैं, उनका सही काम होता है स्कूल जाना और एजुकेशन लेना। लेकिन अपनी मजबूरियों के चलते कई ऐसे बालक और बालिकाएं देखने को मिलती हैं कि वो खतरनाक कारखानों में या खान यानी कि कोल माइंस में काम कर रही हैं, या फिर कोई मिनरल की माइंस होती है वहां पर लोग काम कर रहे होते हैं, जहां पर छोटे छोटे बच्चों को धरती के अंदर भेजते हैं खान को खोदने के लिए, मिनरल्स को निकालने के लिए, क्योंकि उन बच्चों के हाथ पैर और शरीर कंपेरेटिवली छोटा होता है। लेकिन अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और हार्मफुल भी होता है, शायद इतना हार्मफुल कि उन बच्चों को जलाने के काम आ सके, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो सकता है। या कभी कभी कुछ नेचुरल हजार्ड्स आ जाते हैं जिनकी वजह से इन बच्चों को काफी तकलीफ हो जाती है, और इसीलिए हमारी सरकार ने ऐसा कानून बनाया कि कोई भी बालक या बालिका जो कि 14 वर्ष से कम की है वो काम करने के लिए नहीं जाएंगी ऐसी जगहों पर जहां पर खतरा बहुत ज्यादा हो। और इन्हीं सारे कानूनों की वजह से बाल श्रम, जिसको हम चाइल्ड लेबर कहते हैं, इसका भी अंत हुआ। और इसके साथ हमारी आज की ये क्लास यहीं पर खत्म होती है। धन्यवाद।